तो आज तीन महान आचार्यों का तिरुभाव दिवस है। आज सुबह है, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में चर्चा हो चुकी है और आज अब इस समय हम और एक महान आचार्य श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे महान आचार्यों के बारे में सुनकर पढ़कर हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है। कृष्ण भक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की कृपा से प्राप्त हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का गुणगान करने में बहुत आनंद लेते हैं। जितना आनंद भक्त भगवान का गुणगान करने में लेते हैं, उससे ज्यादा आनंद भगवान अपने भक्तों का गुणगान करके करने में लेते हैं। जब वैष्णवों के बारे में हम सुनते हैं तो हमारी भक्ति में निष्ठा बढ़ जाती है, क्योंकि हम जान सकते हैं कि जो भी हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, ये कोई पुस्तकीय बात नहीं है, ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है, बल्कि ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं और हैं जिन्होंने इन चीजों को अमल किया है, अपने जीवन में उतारा है। इससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है कि ठीक है, ऐसे भी चलते फिरते शास्त्र हैं, ऐसे भी चलने फिरने वाले भागवत हैं। भागवत दो तरह के होते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत में हमें बताया जाता है कि हमें नित्य रूप से भागवत की सेवा करनी चाहिए। भागवत पुस्तक भागवत तो है, साथ साथ व्यक्ति भागवत भी। तो व्यक्ति भागवत कहां हुए इतिहास में? जब ऐसे महान आचार्यों की कथाएं हम सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि हां, ऐसे महान आचार्य हुए हैं। इससे हमें एक मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि इन महान आचार्यों ने ऐसे कठिनाई में रहते हुए भी भक्ति की, तो हम भी क्यों नहीं कर सकते, हम भी उनके पद चिन्हों में चल सकते हैं। इस तरह से भगवान के शुद्ध भक्तों की कथाएं सुनना ये एक नित्य नियम है। आखिर श्रीमद् भागवत ये ग्रंथ है क्या? क्या केवल भगवान की कथाएं हैं? नहीं, भगवान की कथा कभी अकेले में नहीं हो सकती, भगवान अपने भक्तों से अलग नहीं हो सकते, जिस तरह से भक्त भगवान से अलग नहीं हो सकते। जब भगवान की लीला का वर्णन आता है तो यह प्रश्न आता है कि किसके साथ लीला करेंगे भगवान? उत्तर है अपने भक्तों के साथ। तो जहां भी भगवान का गुणगान हो, उनके लीलाओं का वर्णन हो, वहां उनके भक्तों का वर्णन तो निश्चित ही होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में शुरुआत से अंत तक न केवल श्री कृष्ण का लेकिन उनके भक्तों का गुणगान भी किया हुआ है। श्री कृष्ण की लीला तो प्रमुखतः दशम स्कंद में दिखने में आती है, इसके पहले ज्यादातर देखा जाए तो केवल उनके भक्तों की कथा है, जैसे ध्रुव महाराज, प्रह्लाद महाराज इत्यादि। और किस तरह से इन्होंने भगवान की भक्ति की, इसके बारे में वर्णन है, और फिर भगवान कैसे प्रकट हुए उनके सामने, उसके बारे में ज्यादा वर्णन इतना नहीं है। तो आइए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में हम आज सुनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वृंदावन के छह गोस्वामी ये बड़े प्रसिद्ध भक्त हैं। ये छह श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु के कई शिष्य हुए, परंतु छह गोस्वामियों का नाम ज्यादा प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था कि जाओ वृंदावन में रहो, वहां जाकर श्री कृष्ण के लीला स्थली उनको ढूंढ निकालो, क्योंकि काल के प्रभाव से ये सब ढक गई हैं। किसी को नहीं मालूम कि कृष्ण भगवान ने वृंदावन में लीला कहां पर किए, तो इन लीला स्थलों को जाकर ढूंढ के निकालो। वहां जाकर 24 घंटे हरि भजन करो, वहां जाकर ऐसे ग्रंथों की रचना करो जिससे कि ये शुद्ध भक्ति का सिद्धांत स्पष्ट रूप से सारे समाज के सामने प्रस्तुत हो जाए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि भक्ति के बारे में कई गलत फहमियां हैं, आज भी हैं। भक्ति के बारे में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वो प्रकट हुए हैं इस पृथ्वी लोक पर कृष्ण प्रेम बांटने के लिए, कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म की स्थापना करने के लिए ये उचित था महाप्रभु के लिए कि वो सही तरह से बतलाएं कि भक्ति ये क्या चीज है और भक्ति ये क्या नहीं है। तो दोनों चीजों के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने छह गोस्वामियों को आदेश दिया कि आप इन सारे तत्वों का स्पष्टीकरण करो ग्रंथों के माध्यम से। इसलिए छह गोस्वामी वो ऐसे ग्रंथ लिखते रहे, साथ साथ में उन्होंने बहुत सा प्रचार भी किया। चैतन्य महाप्रभु ने और एक उनको आदेश दिया कि वहां जाकर श्री कृष्ण के भव्य मंदिरों की स्थापना करना, क्योंकि उस समय तक कोई मंदिर थे ही नहीं, थे तो लोगों के घर में छोटे छोटे मंदिर थे बस। लेकिन वृंदावन जो आज हम देखते हैं कि वृंदावन कृष्ण की नगरी है, पहले भी थी, हमेशा थी, आगे भी रहेगी, परंतु 500 वर्ष पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में गए थे, वृंदावन तो केवल जंगल ही था और कुछ नहीं था। वहां पर कृष्ण भगवान ने कहां लीला किए, कृष्ण भगवान के जो सुंदर मूर्तियां थीं, जो कि उनके प्रपौत्र वज्रनाभ ने स्थापना की थी, वो सब गायब हो चुकी थीं। क्यों गायब हो चुकी थीं? क्योंकि जब से यवन राजा लोग आए, खास करके मुगलों के समय में, तो वो कई बार वृंदावन पे आक्रमण कर चुके और वृंदावन के जो प्रमुख मूर्तियां थीं भगवान श्री कृष्ण की, वहां के पुजारियों ने उनको अलग अलग जगह में जाकर छुपा दिया। खास करके जो राजपूत राजाएं थे जयपुर इत्यादि, वहां पास में ले गए। इसलिए वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु के समय प्राय कोई मंदिर ही नहीं थे वहां पर। तो उन्होंने छह गोस्वामियों को आदेश दिए कि आप ऐसे भव्य मंदिरों की स्थापना भी करना। तो इन छह गोस्वामियों के नाम हैं सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो आज हम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, परंतु मनुष्य रूप में भक्ति का आस्वादन करने के लिए इस पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए। उनकी भक्ति की लीला प्रकट होने के पहले वो एक शुष्क ज्ञानी या तर्की की भूमिका निभा रहे थे। जगह जगह जाकर पंडितों को वाद में हरा देते। उनके जैसा वाद करने वाला कोई नहीं था। केशव कश्मीरी जैसे महान दिग्विजय पंडित को भी उन्होंने परास्त कर दिया था। उस समय महाप्रभु निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे। तो निमाई पंडित पूर्व बंगाल में गए, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। वहां पर वो अलग अलग तरह के भाषण प्रवचन इत्यादि देने के लिए गए, क्योंकि वो ब्राह्मण का व्यवसाय करते थे। खैर, ब्राह्मण तो व्यवसाय नहीं करते, लेकिन ब्राह्मणों का गुजारा कैसे होता है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मणों के 6 कार्य हैं। पठन पाठन, उनको शास्त्र पढ़ना है, दूसरों को पढ़ाना है। यजन याजन, यज्ञ करने हैं, दूसरों को यज्ञ, दूसरों से यज्ञ कराने हैं। और तीसरी बात दान प्रतिग्रह, उनको दान स्वीकार करना है और दूसरों को दान देना है। तो जो सच्चा ब्राह्मण होता है वो अपनी जीविका के लिए केवल दान के ऊपर निर्भर होता है। वो किसी की नौकरी में नहीं जाता, नहीं वो किसी तरह का व्यवसाय करता है। तो निमाय पंडित ब्राह्मण के समाज में, ब्राह्मण के परिवार में प्रकट हुए थे, इसलिए अपनी जीविका के लिए, क्योंकि अभी उनका विवाह भी हो चुका था, अपनी जीविका के लिए अलग अलग जगह जाकर प्रवचन देते, लोग उनको दक्षिणा देते और ऐसे उनका घर चलता। बांग्लादेश में जब वो गए तो एक स्थान पर उन्होंने तपन मिश्र नाम के एक भक्त से उनकी मुलाकात हुई। तपन मिश्र ये एक साधक थे, बहुत सालों से वो भगवान से तीव्र प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, मैं परम सत्य को जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूं और जीवन की संसिद्धि क्या है और इस उद्देश्य की प्राप्ति करने का मार्ग क्या है, और जब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं पाऊंगा मैं समझूंगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है। इतनी तीव्र इनकी इच्छा थी कि सारे शास्त्रों को उन्होंने पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। वो ठीक निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाए कि जीवन का असलियत में उद्देश्य क्या है। स्वयं महाप्रभु श्री कृष्ण होने के नाते, अंतर्यामी होने के नाते, सबके हृदय में स्थित होने के नाते, उन्होंने स्वप्न में तपन मिश्र से कहा कि मैं तुम्हारे घर से बहुत करीब हूं, और उन्होंने ठिकाना बताया और कहा कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आगे चल के आदेश दूंगा। तो तपन मिश्रा को आश्चर्य हुआ, सुबह सुबह उठकर सीधे उस स्थान पर गए जहां के चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था, और वहां पर निमाय पंडित के रूप में वहां पर श्री हरि विराजे थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको एकांत स्थान में ले जाकर कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा तत्व बता रहा हूं जो कि तुम्हें गुप्त रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं, मैं स्वयं श्री कृष्ण हूं। श्री कृष्ण की सेवा करना, श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करना, यही जीवन का लक्ष्य है, और कलि संतरण उपनिषद का ये महामंत्र का जाप सदैव किया करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महत्वपूर्ण बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु ने आज तक ये महामंत्र किसी से भी नहीं कहा था, और इसके बाद भी कई सालों तक इन्होंने महामंत्र किसी से नहीं कहा, बल्कि किसी को पता भी नहीं चला कि निमाय पंडित कभी भक्त हो सकता है, क्योंकि निमाय पंडित हमेशा भक्तों को छेड़ते थे। जहां भी भक्त इधर उधर जाते उनको पकड़ लेते और कहते, भाई क्या भक्ति करते हो मेरे साथ, तुम व्याकरण के बारे में, न्याय के बारे में कुछ वाद करो, कुछ तर्क करो। तो इस तरह से भक्त लोग हैरान होकर निमाय पंडित को देखते ही दूर भाग जाते। अगर निमाय पंडित रास्ते से इधर से आते तो अचानक रास्ता बदलकर उस तरह से रह जाते। तो किसी ने स्वप्न में भी नहीं देखा, सोचा था कि निमाय पंडित कभी भक्ति की बात कर सकता है। तो खैर, ये एक घटना है जहां की निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन किया और फिर उन्होंने तपन मिश्र को एक उपदेश, एक आदेश दिया, कहा कि आप बांग्लादेश या पूर्व बंगाल छोड़ दो, वाराणसी आप चले जाओ। अब तपन मिश्र को समझ में नहीं आया कि इतने सारे धाम हैं भगवान कृष्ण के, इनको छोड़कर मुझे यहां पर ये वाराणसी काशी क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि काशी मायावादी लोगों की राजधानी है। जैसे मथुरा वृंदावन कृष्ण भक्तों की राजधानी है, उसी तरह से काशी या वाराणसी मायावादी लोगों की राजधानी है। मायावादी मतलब कौन होते हैं? जो लोग समझते हैं कि भगवान निराकार हैं, हम भी भगवान हैं, और मुक्ति के बाद हमें भगवान में लीन होना चाहिए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, और इस तरह से तत्वम असी इत्यादि ऐसे वाक्यों को लेकर वो वेदों के वाक्यों को तोड़ मोड़ के अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। अगर वो नाम संकीर्तन करते हैं, अगर वो भगवान की अर्चा विग्रह की आराधना करते हैं, अगर वो श्रीमद् भागवत भी पढ़ते हैं, तो केवल इसीलिए कि वो इनके सहारे अपना हृदय शुद्ध करें और आगे चल के भगवान में लीन हो जाएं। लेकिन भक्तों की भावना ऐसी नहीं रहती है। भक्त लोग जब ये सब कार्य करते हैं तो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, भगवान के प्रति उनके हृदय में शुद्ध प्रेम जागृत करने के लिए करते हैं। भगवान बनने की इच्छा कभी भक्तों के मन में नहीं होती। लेकिन खैर, तपन मिश्र ने सोचा, आदेश तो आदेश है, शायद प्रभु की कोई योजना होगी भविष्य के लिए, इसलिए उसके बहुत जल्दी ही तपन मिश्र पूर्व बंगाल को छोड़कर वाराणसी चले गए। उधर निमाय पंडित लौटकर नवद्वीप या मायापुर लौटकर आए और आगे चल के उन्होंने नाम संकीर्तन का आंदोलन का उद्घाटन किया। हरे कृष्ण मंत्र सब जगह फैलता रहा और फिर कई साल बाद जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, वो वृंदावन की ओर जा रहे थे। जाते समय वाराणसी होकर गए, लेकिन ज्यादा देर रुके नहीं। वृंदावन से लौटते वक्त वो वाराणसी में कई दिनों तक रहे, 2 महीनों तक रहे। चंद्रशेखर आचार्य नाम के एक वैष्णव वहां पर रहा करते थे, तो उनके घर में रहते और रोज तपन आचार्य या तपन मिश्र के घर में जाकर प्रसाद भी ग्रहण करते। जब तपन मिश्र वाराणसी में आए थे पूर्व बंगाल को छोड़कर, तो वहां पे शायद सारे वाराणसी में एक ही वैष्णव हुए होंगे, वो थे चंद्रशेखर आचार्य। इसलिए इन दोनों की मित्रता बहुत आगे बढ़ गई। तो महाप्रभु जब यहां पर आए तो इन दोनों वैष्णवों को उन्होंने संग दिया। तपन मिश्र का एक छोटा लड़का था, उस लड़के का नाम था रघुनाथ भट्ट। बड़ा सात्विक लड़का था, बड़ा सौम्य स्वभाव का, बड़ा शुद्ध हृदय का। अन्य बच्चों की तरह कभी शरारतें नहीं करता था। बचपन से ही वो साधुओं की सेवा करने में रुचि रखता था। देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। अगर
बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं तो उनको भगवान के भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग, उनको अहंकार नहीं होता है, वो आसानी से आदेश का पालन करते हैं और सेवा करने में कभी हिचकिचाते नहीं है। साधारण से साधारण सेवा भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर कहेंगे चलो जूते उठा के वहां रखो, वो खुशी से कर लेते हैं। लेकिन बड़े लोगों में, हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारा मन दूषित हो जाता है। रघुनाथ भट्ट के बारे में हम ये सुनते हैं, कितने से बड़े बड़े ऋषि मुनियों का, भक्तों का इतिहास अगर हम पढ़ें तो हम यही देखेंगे कि वो भक्ति में प्रगति इसलिए कर पाए कि उन्होंने महान वैष्णवों की सेवा की अपने बचपन में। जैसे कि नारद मुनि, श्रीमद् भागवत में उनकी कथा आती है, जब वो व्यास देव को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं तो वो बतलाते हैं कि मैं एक दासी का पुत्र था और हमारे यहां पर कई संत आए थे। चातुर्मास के समय 4 महीने वो हमारे यहां रहे और मैं रोज सुबह शाम उनकी सेवा करता निष्कपट भावना से। ये बच्चों का गुण होता है, निष्कपट रहते हैं। उम्र बढ़ने से आदमी के हृदय में छल कपट की भावना आ जाती है, तो निष्कपट सेवा करने से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने कहा व्यास देव जी से कि मैंने इन संतों की निष्कपट सेवा की और केवल एक बार उनकी अनुमति से उनका उच्चिष्ट मैंने ग्रहण किया। इस तरह से मेरे मन में श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति की भावना जागृत हो गई। तो रघुनाथ भट्ट भी ऐसे ही साधुओं की सेवा करना पसंद करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए तो रघुनाथ भट्ट चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते रहे। बहुत आनंद आया उनको सेवा करने में और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कृपा बरसाई बालक रघुनाथ भट्ट के ऊपर। इस तरह से बड़े निकट से रघुनाथ भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त किया। जब 2 महीने समाप्त हो गए तो चैतन्य महाप्रभु वहां से जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़े। लेकिन ये 2 महीने रघुनाथ भट्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इन 2 महीनों में रघुनाथ भट्ट के हृदय में इतनी तीव्र आसक्ति उत्पन्न हो गई थी चैतन्य महाप्रभु के लिए कि उनके जाने के बाद भी वो दिन रात महाप्रभु का स्मरण करते और उनके मन में कोई उद्देश्य था ही नहीं। और इस तरह से समय बीतता गया। थोड़े दिन और जब बीत गए वो युवक हुए और उम्र बीती, महाप्रभु को कभी भूल नहीं पाए। उनके माता पिता भी महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे, तो उन्होंने अपने मन का विचार अपने माता पिता के सामने रखा। रघुनाथ भट्ट ने कहा कि अब मेरी उम्र हो गई है, मेरे हृदय में तीव्र इच्छा है कि मैं इस संसार को त्याग दूं, केवल चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेकर मैं जगन्नाथपुरी में उनकी सेवा करता रहूं। ये मेरी इच्छा है और इस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। तो उनके माता पिता ने खुशी से आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि उनके माता पिता भी भक्त थे। कितने वैष्णव हैं जो कभी कभी हमें बताते हैं कि मेरे मन में इच्छा तो यह है कि मेरा बच्चा ब्रह्मचारी बन जाए, मेरा बच्चा सन्यासी बन जाए, आगे चल के बड़े खुशी से गौर से गर्व से बोलते हैं कि मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल है जब मेरा बच्चा पूरी तरह से समर्पित हो जाएगा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में, ऐसे कई भक्त कहते हैं। तो तपन मिश्र और उनकी पत्नी ने बड़े खुशी से अनुमति दे दी। हालांकि और बच्चे नहीं थे उनके, उनको वृद्ध अवस्था में कौन देखभाल करता, ये सब सोचा नहीं उन्होंने। वो तो जानते थे कि देखभाल हमारा बच्चा क्या करेगा, देखभाल करने वाले तो भगवान होते हैं। बच्चे के होते हुए भी आदमी बीमार पड़ सकता है, कठिनाई में आ सकता है, और एक दिन बच्चे के होते हुए भी व्यक्ति की मृत्यु आने वाली है। सच्चा संरक्षण करने वाले तो भगवान है। तो इस तरह से उन्होंने हृदय से आशीर्वाद दिया और बड़े आनंद से युवक रघुनाथ भट्ट वृंदावन से निकल पड़े। चलते 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 बंगाल आए। उन दिनों तो कोई रेलगाड़ियां एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाना तो पैदल जाना पड़ता था। तो बंगाल में चलते चलते उनको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो सदैव राम नाम का जप कीर्तन और कथा करते थे, इसलिए उनका नाम भी था रामदास विश्वास। बड़े प्रसिद्ध थे, सभी लोग उनकी प्रशंसा करते थे कि यह आदमी इतना शुद्ध भक्त है श्री रामचंद्र का, दिन रात राम नाम का जप कीर्तन करता है और इतने सुंदर ढंग से राम कथा करता है कि लोगों का हृदय पिघल जाता था। लोगों को हृदय में राम के प्रति आकर्षण जागृत हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि अरे आप जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे हो, मैं भी वहां जाना चाहता हूं, चलो हम दोनों साथ में जाते हैं। तो रामदास विश्वास ने रघुनाथ भट्ट से कहा कि अरे आपका सामान जो है ये मुझे दे दो, मैं पकड़ना चाहता हूं। तो रघुनाथ भट्ट ने कहा कि अरे आप तो इतने महान विद्वान हैं, आप तो श्री रामचंद्र के इतने बड़े भक्त हैं, सदैव आप राम नाम का जाप और कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, और आप तो कायस्थ जाति के हैं, तो इसलिए आपके लिए उचित नहीं है। आइए मैं मेरा सामान पकड़ता हूं, हम आराम से आनंद से चलते चलते राम कथा करते करते हम पूरी निकल पड़े। लेकिन रामदास विश्वास ने बड़े आग्रह करने पर रघुनाथ भट्ट ने मान ली उनकी बात उनकी खुशी के लिए, और फिर रामदास विश्वास ने रघुनाथ भट्ट का सामान जो है अपने सिर पर रखा और दोनों पैदल निकल पड़े जगन्नाथपुरी की ओर। चलते चलते रामदास विश्वास केवल राम नाम करते और कोई बात नहीं कहते, कोई प्रजल्प नहीं, संसार की बातें नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, कुछ नहीं। और आखिर रघुनाथ भट्ट और रामदास विश्वास जगन्नाथपुरी पहुंचे। सीधे रघुनाथ भट्ट चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान में गए और दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक को देखा तो उनको तो बहुत आनंद आया, उन्होंने आलिंगन कर लिया बड़े प्रेम से रघुनाथ को। रघुनाथ ने दूसरी बार दंडवत किया अपने माता पिता और चंद्रशेखर आचार्य की ओर से। बड़े अच्छे ढंग से प्रेम से स्वागत करने के बाद महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद से कहा कि अरे गोविंद देखो कौन आया है, वाराणसी से रघुनाथ भट्ट आया है, अब ये हमारे साथ में रहेगा, कोई अच्छा निवास स्थान ढूंढ के रघुनाथ को वहां ले जाओ, उसे नहलाओ धलाओ, फिर अच्छा जगन्नाथ प्रसाद खिलाओ और जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए ले जाओ। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट के ऊपर बहुत कृपा की, बहुत ध्यान दिया उनको। लेकिन रघुनाथ भट्ट ने एक बात गौर से देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने एक बार भी रामदास विश्वास की ओर देखा भी नहीं, हालांकि वो रघुनाथ भट्ट के साथ आए थे। तो उनको समझ में नहीं आया कि क्या कारण हो सकता है, फिर आगे चल के इसका राज खुल गया। राज क्या था? राज ये था कि हालांकि रामदास विश्वास सदैव राम नाम का जप करते और राम कथा करते, परंतु अपने हृदय में वो भगवान में लीन होने की इच्छा रख रहे थे। अर्थात वो एक मायावादी थे, बाहर किसी को पता नहीं चला, यहां तक कि रघुनाथ भट्ट को भी पता नहीं चला, लेकिन चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण हैं, अंतर्यामी हैं, परमात्मा है, सबके हृदय में स्थित हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, तो सबके हृदय में स्थित होने के नाते वो समझ पाए कि रामदास विश्वास के मन में क्या इच्छा है। इसलिए महाप्रभु प्रसन्न नहीं हुए। मायावादी लोग बहुत कुछ तपस्या करते हैं, बहुत भजन कीर्तन भी करते हैं, शायद हरे कृष्ण महामंत्र भी बोलते हैं, परंतु उनका उद्देश्य यह है कि वो भगवान में लीन होना चाहते हैं। ये ने रविनदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयस्त भावाद अभिशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंत्यदो अनादृत युष्मद अंग्रयः। ब्रह्मा जी श्रीमद भागवत में कहते हैं अन्य ऐसे कोई लोग हैं जो आपके भक्त नहीं है, मतलब अन्य लोग आपके भक्तों के अलावा, हे अरविंद अक्ष मतलब हे कमल नयन श्री कृष्ण, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो आपके भक्त नहीं है। ये ने रविनदाक्ष विमुक्त मानिनस, ये लोग क्या सोचते हैं कि हम मुक्त हो गए हैं, विमुक्त मानिनः, अपने आप को मुक्त पुरुष समझते हैं, त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः, लेकिन उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। उनके बुद्धि में कलमश क्या है? उनके बुद्धि में मल ये है कि वो भगवान से एक होना चाहते हैं। किस तरह की सेवा हो सकती है ये? जब हम सेवक जिनका जिनकी सेवा हम कर रहे हैं उनका स्थान ही हम लेना चाहेंगे तो कैसे सेवक हम बन सकते हैं? समझिए कि कोई एक सेवक है, अपने मालिक की सेवा करता है, लेकिन उसके मन में इच्छा है कि कब समय आएगा जब मालिक को उड़ाकर मैं मालिक के स्थान में बैठ जाऊंगा। ये भौतिक वृत्ति है। औरंगजेब ने किया ना अपने पिता के प्रति, शाहजहान, कंस ने किया ना अपने पिता उग्रसेन के प्रति। तो भगवान भी हमारे पिता हैं, हमारे परम पिता हैं, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए सदैव। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, हमारा स्वरूप है कि हम श्री कृष्ण के दास हैं, हम कभी भगवान नहीं बन सकते। हमारा स्वरूप है कि सदैव भगवान की सेवा हमें करना है। कई बार जो मायावादी लोग होते हैं वो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं कि मैं भी भगवान हूं, लेकिन हम पर ब्रह्म नहीं है, हम केवल ब्रह्म हैं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के सेवक हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में अविशुद्ध बुद्धयः, उनकी बुद्धि प्रदूषित हो गई है। और ऐसा होते हुए ये लोग बहुत तपस्या करते हैं, ज्ञान योग के मार्ग में चलने वाले लोग, उनको बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। आरुह्य कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण मतलब कठिनाई कष्ट, आरुह्य मतलब इतना सब करते हुए परम पदम ततः, सोचते हैं कि अब हमने परम पदम को प्राप्त कर लिया है, देखो इतनी तपस्या हमने की, अब हम विमुक्त हो गए हैं और परम पद को प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? पतन्ति अधः, उनका पतन हो जाता है। अधः मतलब नीचे। क्यों हो जाता है? हालांकि भगवान के निराकार ज्योति में वो लीन भी हो सकते हैं, परंतु उस निराकार ज्योति में वो दीर्घ काल तक टिक नहीं पाते हैं। क्यों नहीं टिक पाते हैं? पतन्ति अधः अनादृत युष्मद् अंघ्रयः, अंघ्री, अंघ्री मतलब चरण कमल, द्विवचन अंघ्रयः। तो युष्मद् अंघ्रयः अनादृत, क्योंकि उन्होंने आपके चरण कमलों का अनादर किया है हे प्रभु, इसलिए हालांकि वो निराकार ज्योति की प्राप्ति करते हैं फिर भी वहां से उनका पतन होके वो यहां पर धरातल में वापस आ जाते हैं। तो बाहरी दृष्टि से समझना कि कौन मायावादी है और कौन नहीं है बहुत कठिन है समझना, इसलिए भक्तों के लिए यह सदैव एक चेतावनी है, बारंबार हमें ध्यान रखना चाहिए कि बाहरी रूप से भी कोई भक्ति की बातें करें लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो वास्तव में भक्त है। भक्त होना इतनी आसान बात नहीं है, है एक दृष्टि से, आखिर करना क्या है? भक्ति में कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े खानदान में जन्म लेने की जरूरत नहीं है, कोई संस्कृत पंडित बनने की जरूरत नहीं है, घर परिवार त्यागने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरी है इसके लिए? केवल भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करना, श्रद्धा की भावना से अपने आप को दासानुदास बनाकर भक्तों की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, बस। तो फिर कठिनाई किस बात की है? कठिनाई इस बात की है कि इतने जन्मों तक हम अपने आप को प्रभु समझ बैठे हैं, इस जन्म में आकर हमको दास होने के लिए कहा जाता है तो बहुत कठिनाई हो जाती है, यह समस्या है। इसलिए यह समझना कि जो भी कृष्ण कथा कर रहा है वो भगवान का भक्त है यह ठीक नहीं है। हमें परीक्षा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी अक्सर भक्तों को चेतावनी देते थे, इधर उधर जाके कुछ सुनना नहीं तुम। स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी चैतन्य चरितामृत में एक ब्राह्मण कवि को ये चेतावनी देते हैं, जहां भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, जाओ भागवत पढ़ना है तो पढ़ो लेकिन एक सच्चे वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के पास जाके पढ़ो, न कि किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के पास जाकर जो कि अपने जीविका के लिए पैसे कमाने के लिए भागवत बोल रहा हो। जो स्वयं भक्त है और जो शुद्ध भक्ति का प्रचार करता है और उस भक्ति का आचरण करता है, ऐसे भक्तों के मुखारविंद से भागवत सुनो, ऐसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने आदेश दिया। क्योंकि यही ब्राह्मण कवि जो था उसने मनगढ़ंत ढंग से एक कविता लिखी थी चैतन्य महाप्रभु के बारे में। उस कवि ने सोचा था कि मैं इनका गुणगान कर रहा हूं, परंतु जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने सुना, उनको पता चला। अन्य जो भक्त हैं वो इस कवि और उसकी कविता का गुणगान कर रहे थे, वाह 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 कितनी सुंदर कविता है, कितनी बढ़िया तरह से इन्होंने भगवान की प्रशंसा की है। लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एक बार सुन के ही उनको कह दिया कि बस आगे नहीं पढ़ो, पहले श्लोक के बाद ही उनको बंद करा दिया और बिल्कुल डीप में गहराई में जाकर उनको बताया कि किस तरह से उनका सिद्धांत बिल्कुल गलत था। कई रविवार पहले इस लीला के बारे में विस्तार में चर्चा हुई थी। तो इसका मतलब है कि जितने सारे वैष्णव थे वो भी नहीं समझ पाए थे, केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी आए थे जो कि एक बड़े दक्ष बहुत प्रवीण थे, भक्त विद्वान थे, वही देख पाए समझ पाए कि इस गुणगान के पीछे भी जो भाव है, जो सिद्धांत है, वो गलत है। आजकल टेलीविजन के ऊपर या इधर उधर बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, हमें लगता है कि अच्छा भाषण है क्योंकि ये लोग इतने आकर्षक रूप से बोलते हैं कि हमें लगता है कि एक बार हमने टीवी खोल दिया, बस बैठे रहे यहां पर, मीठी मीठी बातें बोलते हैं। परंतु हमें ध्यान से काम लेना चाहिए, विरला ही कोई एक प्रामाणिक शुद्ध भक्त मिलेगा, भले वो भगवान के बारे में कथा बोल रहा हो। जब तक व्यक्ति प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में नहीं आता, तब तक शुद्ध सिद्धांत के अनुसार बात करना यह प्राय असंभव है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश, कि मायावादियों का भाष्य सुनने से सर्वनाश हो जाता है, हमारी भक्ति भंग हो जाती है। ये प्रदूषण एक बार हमारे हृदय में बैठ गया कि मैं भगवान हूं, तो उस बात को निकालना बहुत बहुत कठिन है। एक भक्त हमारे संस्था में है 25 साल से, ये घटना हम बार बार बताते हैं, 25 साल बाद एक बार वो हमको मिले, वो बताने लगे कि मुझे कृष्ण भावनामृत की जो फिलॉसफी है, दर्शन है, बहुत पसंद है, लेकिन एक बात अब तक मुझे 100% विश्वास नहीं हो रहा है। वो क्या है कि भगवान एक व्यक्ति है। क्योंकि जब से मैं विद्यार्थी था तब से मैं इन योगियों के पास जाता था, उनसे ये सब सुनता था, और मेरे हृदय में ऐसी बैठ गई ये बात कि निकलती नहीं है। वास्तव में ऐसे कई भक्तों को मिल चुके हैं, और भी कई भक्तों को मिल चुके हैं जो जिनको जितना मानसिक तकलीफ हुआ है, क्योंकि उनके हृदय में संघर्ष, यहां पर वो सुनते हैं कि भगवान व्यक्ति है, पहले वो सुन चुके हैं कि हम निराकार हैं, हम ही भगवान हैं, और यहां आने के बाद उनको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन इन दोनों चीजों में जो टक्कर आ जाता है उनके हृदय में, इससे इस टक्कर को, इस युद्ध को जीतना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है, और इसलिए मानसिक तनाव बहुत हो जाता है उनको। इसलिए हमें इसे साधारण बात नहीं समझना चाहिए, केवल वैष्णवों के मुख से सुनना चाहिए। इसलिए बताया गया है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ठम यथापयः। अवैष्णव के मुख से हरि कथा नहीं सुननी चाहिए, हालांकि हरि कथा पूतम हर्ता अर्थात बहुत शुद्ध है, पावन करने वाली है, परंतु जब वो एक अवैष्णव से मुख से आती है तो हमारे हृदय को प्रदूषित करती है, पवित्र नहीं करती। जिस तरह से सर्प उच्चिष्ठ यथा पयह, पयह मतलब दूध, जब कोई जहरीला सांप दूध को चखता है तो दूध भी जहरीला हो जाता है, उस दूध का पान करने से हमारी मृत्यु हो सकती है। हालांकि साधारणतः दूध एक पौष्टिक आहार होता है, परंतु जब एक जहरीले सांप के स्पर्श करने के बाद उसी दूध को पिएंगे तो नुकसान होगा हमारा। ठीक उसी तरह से हरि कथा ये पवित्र है, पावन है, परंतु जब अवैष्णव के मुख से सुनते हैं तो इसका विपरीत परिणाम हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी होने के नाते इस बात को जानते थे। जब वैष्णवों ने यह बात सुन ली तो बहुत सावधान हो गए कि अभी आज से हमको बहुत होशियार रहना चाहिए, इधर उधर जाके किसी से भी संग नहीं करना चाहिए। अब यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हम उनके संग में जाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे और उनको हरा के आएंगे और भक्ति की के सिद्धांत को स्थापित करके आएंगे। मायावादी भाष्य सुन ले हो सर्वनाश, इतना जबरदस्त है यह मायावादी दर्शन कि संशय एक बार मन में आ गया तो बड़े बड़े भक्त हैं उनका भी मन विचलित हो सकता है, ऐसे महाप्रभु कहते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, क्षमा कीजिए, चैतन्य चरितामृत में। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। वैसे देखा जाए तो वैष्णव सिद्धांत बहुत आसान है, भगवान एक व्यक्ति है, इसमें इसको विश्वास करने के लिए क्या कठिनाई हो सकती है। हम ऐसे किसी भी चीज को नहीं जानते जो कि निराकार अवस्था में बुद्धिमान हो, शक्तिमान हो, समर्थ हो। हर चीज के पीछे कोई बुद्धि है और हर बुद्धि के पीछे एक व्यक्ति है। हम कहते हैं कि कानून सरकार ने बनाया है, लेकिन सरकार क्या है? क्या सरकार के पीछे कोई व्यक्ति नहीं है? कोई तो व्यक्ति है जिन्होंने अपनी बुद्धि लगाकर ये कानून कायदा बनाया है। इस तरह से भगवान एक व्यक्ति है, इस बात को समझना ये कठिन नहीं है, आसान है। लेकिन अगर हम भक्तों के संग में रहे तब ये आसान है। तो खैर, रामदास विश्वास वहां से चले गए, रघुनाथ भट्ट जगन्नाथपुरी में रहे और 8 महीनों तक वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते रहे, उनके लिए भोजन पकाते, और इतना स्वादिष्ट था उनका भोजन कि चैतन्य महाप्रभु कहते कि ये तो अमृत है। भगवान को भोजन अच्छा कब लगता है? जब बनाने वाला उसको बड़े भक्ति भाव से बनाए। भगवान हमारे आलू टमाटर दाल चपाती चावल वो नहीं खाते हैं। हाँ खाते हैं, लेकिन पसंद क्या करते हैं? उसमें जो भक्ति मिलाई हुई है वो ग्रहण करते हैं। भगवान को भोजन की कमी नहीं है, भगवान को अपने धाम में बहुत कुछ है। भगवान आत्मा राम है, पूरी तरह से संतुष्ट है। वो हमारे भोग या नैवेद्य चढ़ाने के ऊपर निर्भर नहीं है, परंतु हमें जरूरत है भगवान को भोग चढ़ाने के लिए, क्योंकि हम भोग नहीं खा सकते, हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्युपहृतम अश्नामी प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं कि कोई मुझे भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल अर्पण करे, भक्ति भाव से, तो मैं भी बड़े प्रेम से उसको ग्रहण करता हूं, अश्नामी, जरूर मैं खाऊंगा उसको। तो रघुनाथ भट्ट के भोजन में इतना प्रेम होता था, इतने भक्ति भावना से वो बनाते थे कि भगवान को बहुत स्वादिष्ट लगा और भगवान ने बड़ी प्रशंसा की रघुनाथ भट्ट की। रघुनाथ भट्ट तरह तरह के सेवाएं करते थे चैतन्य महाप्रभु के लिए, जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन और नृत्य करके थक कर आ जाते, उनके चरण कमलों का मालिश करते। इस तरह से 8 महीने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वहां पर रहे और फिर इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने 3 आदेश दिए रघुनाथ भट्ट को। पहला आदेश था कि तुम मेरे पास 8 महीने रह चुके हो, अब मेरी इच्छा है कि तुम वाराणसी फिर से लौट जाओ और वहां अपनी माता पिता की सेवा करो उनके रहने तक। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं सन्यासी थे, स्वयं अपने माता को अपने पत्नी को छोड़कर सन्यास लिया था उन्होंने, तो अब वो क्यों कह रहे हैं रघुनाथ भट्ट से कि जाके अभी अपने माता पिता की सेवा करो। जब रघुनाथ दास गोस्वामी आए पहली बार अपने परिवार को छोड़कर, तो उन्होंने रघुनाथ दास को कहा था कि फिर से लौट कर जाओ और बिल्कुल एक संसारी व्यक्ति की तरह रहो, बाहरी दृष्टि से ऐसे नाटक करो कि तुम एक संसारी व्यक्ति हो, लेकिन अंदर से सदैव श्री कृष्ण का चिंतन मनन करते रहना, और वो समय आएगा जब तुम मेरे पास आ पाओगे। तो पहली बार रघुनाथ दास जब आए थे उनको भेज दिया था वापस, लेकिन दूसरी बार जब आए तो महाप्रभु ने उनको बड़े प्रेम से स्वीकार किया। उस समय वापस भेजा नहीं माता पिता की सेवा करने के लिए। और यहां पर 8 महीने रघुनाथ भट्ट को उन्होंने साथ में रहने दिया और फिर वापस भेज दिया कि जाओ माता पिता की सेवा करो। तो भगवान और भक्तों के आदेशों को समझना कभी मुश्किल हो जाता है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए। वैष्णव भगवान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कभी समझना कभी मुश्किल हो जाता है। कि तपन मिश्र और उनकी पत्नी श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश रघुनाथ भट्ट को वास्तव में केवल ये नहीं था कि जाके माता पिता की सेवा करो, उनका आदेश था कि श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों की जाके सेवा करो। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात उन्होंने कहा, वहां जाकर उनकी सेवा करो लेकिन ब्रह्मचारी ही रहना, गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं करना, शादी नहीं करना। दूसरी बात, तो हालांकि माता पिता की सेवा करने के लिए कह दिया लेकिन कहा कि और तुम इस संसार के जाल में मत फंसो, तुम ब्रह्मचारी ही रहो जब तक कि तुम्हारे माता पिता इस संसार में रहें, और फिर मेरे पास आ जाना। और तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि तुम्हें रोज एक वैष्णव से श्रीमद् भागवत बड़े भक्ति भाव से सुनना चाहिए। ये आदेश महाप्रभु का था कि रोज सुनो, इसको पढ़ो और उसको सुनाओ। बड़े भारी हृदय से रघुनाथ भट्ट महाप्रभु के संग को छोड़कर वापस वाराणसी आए। वाराणसी में पूरे 4 साल रहे, अपने माता पिता जो कि शुद्ध भक्त थे उनकी सेवा की, और जैसे महाप्रभु ने आदेश दिया था वो रोज भागवत सुनते, हरिनाम लेते, और 4 साल के बाद उनके माता और पिता दोनों का देहांत हो गया, दोनों भगवान के धाम में वापस चले गए। अंतिम क्रियाएं इत्यादि करके रघुनाथ भट्ट अब इस संसार में फिर से अकेले हो गए थे, उनकी कोई संसार की जिम्मेदारियां नहीं थीं, तो फिर से चैतन्य महाप्रभु के शरण में जगन्नाथपुरी लौट कर आए, फिर से महाप्रभु की सेवा में मग्न रहे। 8 महीने पूरे यहां पर रहे और फिर चैतन्य महाप्रभु ने और आदेश दिए रघुनाथ भट्ट को, कहा कि हे रघुनाथ, अब मेरी इच्छा है कि तुम वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में निवास करो, लेकिन कहां, सीधे मेरे शुद्ध भक्त रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास जाना, उनका आश्रय लेना और उनके शरण में ही रहना, तीसरी बात उनकी सेवा करना, चौथी बात दिन भर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और कीर्तन करना, और ज्यादा से ज्यादा श्रीमद् भागवत वैष्णवों के संग में पढ़ना, पढ़ाना, सुनाना सबको। इस तरह से आदेश देकर चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट को वृंदावन भेजा, लेकिन इसके पहले उनको 2 विशेष उपहार दिए। पहले जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद जो स्वयं उनको जगन्नाथ जी ने दिया था मंदिर में, वो महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट के हाथ हवाले कर दिया, और एक भेंट दिया महाप्रसाद का एक तुलसी का हार जगन्नाथ जी का, जो बहुत लंबा था।
साथ साथ जगन्नाथ जी का महाप्रसाद तांबूल पान, भगवान खाते हैं पान, हमें नहीं खाना है। तो ये प्रसाद देकर रघुनाथ भट्ट को उन्होंने भेज दिया। फिर से भारी हृदय से रघुनाथ भट्ट जगन्नाथपुरी से निकल पड़े और आखिर कई दिनों के बाद पैदल चलते चलते वो पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन तो उस समय छोटा स्थान था, ज्यादा लोग थे नहीं। आजकल तो वृंदावन में कितने सारे गाड़ियां, टैक्सी, ये वो बहुत हलचल है। उस जमाने में शांत जगह था, बहुत कम लोग रहा करते थे, इसलिए सभी लोग हर एक अन्य लोगों को जानते थे। जो भी लोग रहते थे, थोड़े बहुत ऋषि साधु लोग, बाबा जी लोग वहां पर रहा करते थे। तो जैसे वहां वृंदावन में पहुंचे, सीधे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास गए और उन्होंने बड़े हर्षित होकर रघुनाथ भट्ट का स्वागत किया, अन्य भक्तों से उनका परिचय कराया और इस तरह से रघुनाथ भट्ट उनके संग में रहे और उनके निकट रहकर उनकी सेवा करते, उनसे कृष्ण कथा सुनते, उनके साथ भजन करते, श्रीमद् भागवत की चर्चा करते, साधारण से साधारण सेवाएं भी करते। इस तरह से रघुनाथ भट्ट बड़े आनंद से वृंदावन में रहकर अपने दिन बिताने लगे। दिन भर और भलके रात भर भी वो भक्ति में लगे रहते हैं। षड गोस्वामियों के बारे में बताया जाता है कि वो केवल एक या डेढ़ घंटा 24 घंटे में सोया करते थे, बाकी समय वो या तो भजन करते, कीर्तन करते, जप करते, या तो श्रीमद् भागवत पढ़ते या सुनाते, प्रचार करते, या तो ग्रंथ लिखते, या भगवान के अर्चक विग्रह की सेवा करते। इतने सेवा में मग्न होते थे कि वो कभी खाना भूल भी जाते थे, सोना भी भूल जाते थे कि हमें सोना है, खाना है। हम सब सोना भूल नहीं जाते हैं, खाना लेना, प्रसाद लेना भूल नहीं जाते, जब भूल जाते हैं सोने के लिए, खाने के लिए। लेकिन षड गोस्वामी अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरी तरह से भूल गए और कभी भोजन लिया और कभी नहीं भी लिया। कभी दो तीन दिन में एक बार कुछ थोड़ा बहुत ले लिया तो ले लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया। ऐसे उनका जीवन था। बड़े प्रेम से रघुनाथ भट्ट वृंदावन में रहकर श्रीमद् भागवत का पाठ करते। कोयल की तरह मीठी उनकी वाणी थी। हर एक जो गोस्वामी है, 6 गोस्वामियों में हर एक न एक कोई विशेष गुण है या कई विशेष गुण है। रघुनाथ भट्ट के इनका विशेष गुण यह है कि वो बहुत अति मधुर ढंग से श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते थे, अपने कोकिल वाणी से बहुत मीठा उनके स्वर हुआ करते थे और हर एक श्लोक वो 3 अलग अलग धुनों में वो गाते थे। इस तरह से जो भी लोग सुनते थे रघुनाथ भट्ट के श्रीमद् भागवत के पाठ को, वो भाव विभोर हो जाते थे और रघुनाथ भट्ट को छोड़ते ही नहीं थे। फिर रघुनाथ भट्ट राधा गोविंद देव की सेवा में लगे रहे। राधा गोविंद देव ये वृंदावन का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। जैसे हम पहले बतला रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को आदेश दिया था कि वहां भव्य कृष्ण मंदिरों की स्थापना करना है। राधा गोविंद देव, राधा दामोदर, राधा गोकुल आनंद, राधा श्याम सुंदर, राधा गोपीनाथ इत्यादि ऐसे कई महत्वपूर्ण मंदिर हैं। आज जितने भी बड़े बड़े महत्वपूर्ण मंदिर हैं वो 6 गोस्वामी ने बनाई हैं। 7 प्रमुख मंदिर हैं। केवल बांके बिहारी मंदिर छोड़कर, जो उसके थोड़े समय बाद आया, ये जो प्रमुख 7 मंदिर है वृंदावन के, 6 गोस्वामी ने ही बनाया। तो राधा गोविंद देव का मंदिर, इसकी स्थापना वास्तव में रूप गोस्वामी ने की थी। जब रूप गोस्वामी वृंदावन में आए तो गोविंद देव को ढूंढ रहे थे, कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे। लेकिन बहुत दिन प्रयास करने के बाद भी जब गोविंद देव मिले नहीं तो निराश होकर रूप गोस्वामी यमुना जी के तट पर गए और वहां पे हे कृष्ण हे गोविंद कह के
बड़े हृदय से रोने लगे, क्योंकि वो गोविंद को ढूंढ नहीं पाए थे, गोविंद के विग्रह को। और फिर अचानक उनके सामने एक बालक आया जो कि ग्वाल बाल था, बहुत सुंदर बालक था और बड़े मीठी बोली थी उसकी। वो कहने लगा, अरे बाबा जी आपको क्या चाहिए? देखो वहां पर एक गाय है जो उस पर्वत के ऊपर जाकर हमेशा वो दूध देती है, वहां जाकर देखो तो सही क्या है। जल्दी ही रूप गोस्वामी वहां पर गए और जब उन्होंने देखा कि पर्वत के ऊपर एक छेद था, वहां पर नीचे देखा, आश्चर्यचकित हो गए। सारे वहां जो भी निवासी थे सबको बुलाया, अंदर गोविंद जी थे, गोविंद जी की सुंदर मूर्ति। वो योग पीठ था, गोविंद देव का स्थान था। तो फिर रूप गोस्वामी ने ये ठीक समझा कि यहां कोई मंदिर बनना चाहिए। इस समय के पहले रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वृंदावन आ चुके थे, काफी समय से वहां रह रहे थे और उनके भी कई शिष्य हो गए थे। इन शिष्यों में से प्रमुख थे जयपुर के राजा, राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह ने वहां पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के आदेश अनुसार एक सुंदर मंदिर बनाया, 7 मंजिल वाला मंदिर। उस जमाने में भी सोचिए कितना कठिन हुआ होगा, लाल पत्थर का बना हुआ है, आज भी है ये मंदिर। सबसे बड़ा मंदिर था वो वृंदावन में, सारे उत्तर भारत में इससे बड़ा मंदिर नहीं था। और क्योंकि वो पर्वत के ऊपर स्थित था इसलिए ऊंचाई में और भी ज्यादा लग रहा था। एक बार हुआ ये कि आगरा में औरंगजेब राजा, मुगल राजा औरंगजेब अपने किले में बैठे थे और उन्होंने दूर वृंदावन की ओर देखा और देखते देखते देखा कि वहां कोई दिया जल रहा है। तो अपने मंत्रियों को बुलाया कि ये क्या जल रहा है, वो क्या, कौन सी इमारत है वो, हमारी इमारत से ऊंची इमारत, कौन सी इमारत है ये? तो उन्होंने बोला कि ये वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर है, ये पर्वत के ऊपर है, 7 मंजिल ऊंचा है और इस मंदिर के शिखर के ऊपर वहां पुजारियों ने, भक्तों ने एक घी का दीप लगाया हुआ है, वो दीप है। तो औरंगजेब ने कहा कि अरे इतना शानदार मंदिर, इतना सुंदर मंदिर। औरंगजेब को सहन नहीं हुआ, तुरंत सेना को लेकर निकल पड़े और फिर वहां आकर ऊपर के मंजिलों को तोड़ दिया। केवल आज 1 या 2 मंजिल राधा गोविंद मंदिर के रहे हैं, लेकिन इसके पहले पुजारियों को पता चल गया कि औरंगजेब आ रहा है, इसलिए गोविंद देव को वो ले वहां से उन्होंने स्थानांतरित किया, जल्दी से छुपा कर उनको ले गए और आज वही मूर्ति जयपुर में है। जयपुर में राधा गोविंद जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। जयपुर में भी कई लोग बड़ी संख्या में प्रातःकाल में 5 बजे मंगल आरती के लिए, दर्शन के लिए आते हैं गोविंद देव का। देखने लायक एक दृश्य है। और अब वहां जो गोविंद देव हैं वो उनकी प्रतिमा मूर्ति है, मतलब मूल मूर्ति तो चले गए गोविंद जयपुर और प्रतिमा मूर्ति की स्थापना हो गई बाद में। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा इस विशाल और सुंदर मंदिर को बनवाया। आज भी आप जाकर देखेंगे तो मंदिर एक छोटे से पहाड़ के ऊपर है, आज भी कितना सुंदर दिखता है ये। तो उस जमाने में इतना बड़ा मंदिर, 7 मंजिल वाला मंदिर कितना सुंदर दिख रहा होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। इस तरह से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अन्य गोस्वामियों के संग रहकर वृंदावन में अपने दिन ऐसे बिताते। उनका जीवन बड़ा सरल होता था, केवल एक छोटा सा कौपीन पहनते, छोटा सा कपड़ा, खाने के लिए क्या खाते, माधुकरी करते, मतलब घर घर में जाकर भिक्षा मांगते, जो भी मिलता बस उसको ग्रहण कर लेते। उनकी कोई कुटिया नहीं थी, कोई बंगला नहीं था, कोई आश्रम नहीं था, एक रात इस पेड़ के नीचे, दूसरे रात किसी दूसरे पेड़ के नीचे, ऐसे रहते थे। दिन भर भगवान का भजन कीर्तन यही चलता था। और उनकी एक और विशेष बात यह थी कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कभी भी गलती से भी किसी भी वैष्णव की निंदा नहीं करते थे, और न ही वो निंदा सुनते थे। जब भी अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे वैष्णव की निंदा करता तो उस वैष्णव का वो गुणगान करते। इस तरह से रघुनाथ भट्ट ने हमारे लिए एक ऐसा ऊंचा आदर्श प्रस्तुत कर रखा है कि वैष्णव को कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस तरह से अपना समय बिताना चाहिए। इस तरह से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कई साल वृंदावन में रहकर फिर अंत में उन्होंने आज की तिथि पर, इसी दिवस पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और वापस गोलोक वृंदावन चले गए। अन्य 6 गोस्वामियों 5 गोस्वामियों की तरह है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी भगवान श्री कृष्ण के एक नित्य पार्षद हैं। वो गोलोक वृंदावन में राग मंजरी हैं, गोपियों की एक सेविका है, और वो वापस अपने सिद्ध देह, अपने स्वरूप को प्राप्त करके वहां पर वापस लौटकर चले गए। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। तो और 5 मिनट आपसे निवेदन है कि आप यहां बैठे, हम ये भजन गाएंगे श्री षड गोस्वामी अष्टक। आपके पास ये पुस्तक है, भजन पुस्तिका है, तो 12 है। पुण्य दें जो कि शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए उचित है।
कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पर प्रेमामृतांभो निधि धीरा धीर जन प्रिय प्रिय कर निर्मत्सर पूजित श्री चैतन्य कृपा भर भुवि भुव भरा वहन तारको वंदे रूप सनातन रघुयुग श्री जीव गोपाल को नाना शास्त्र विचारण एक निपुण सद्धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजन नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुयुग श्री जीव गोपाल को। श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधो श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो। पापोत्तापन कृन्तनौतनुभृतां गोविंद गानामृते। आनन्दां बुद्धिवर्धनैकनिपुण कैवल्यनिस्तारक। वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत्। भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंठाश्रित। गोपी भावरसामृताभिलहरी कल्लोलमग्नो मोहो। वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। कुजित कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूराकुले। नाना रत्न निबद्ध मूल विटप श्रीयुक्त वृंदावने। राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतो जीवार्थ दौयो मुदा। वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। व्याख्या पूर्वक नाम गान नतिभि कालावसानी कृतो निद्राहार विहार का दिविजित चात्यंत दीन चय राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातन रघुयुग श्री जीव गोपालको राधा कुंड तटे कलिंद तनया तीरे च वंशी वटे प्रेमोन्मादवशादशेषदशया ग्रस्तो प्रमत्तो सदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुदा वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालको हे राधे व्रज देविके च ललिते हे नंद सुनो कुतः श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदे वन्ये कुतः घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर्महाविह्वलो वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालको वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालको वंदे रूप सनातन प्रभु युगो श्री जीव गोपाल को वंदे रूप सनातन प्रभु युगो श्री जीव गोपाल को
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे